आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला।
ओ कोई आज गया कोई काल गया कोई जाने वाला अभी अभी कोई आज गया कोई काल गया कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, दुनिया खिलौना जैसे बालक का खेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला।
तू जो कहे के मैं हूँ झूठी है बात तेरी, वो ही बनाने वाला वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने दो दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी करेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला।
हम शांति बहुत समय पहले ईरान के राजा खुशरो ने अपने एक मंत्री जो कि एक राज चिकित्सक भी थे उनको भारत भेजा, क्योंकि वो जो राज चिकित्सक मंत्री थे प्रधानमंत्री, उसने कहा कि मैंने सुना है कि भारत में संजीवनी बूटी मिलती है, वो एक ऐसी दवा है कि जो सभी रोगों को ठीक कर देती है, लाइफ गिविंग हर्ब, ऐसी वो जड़ी बूटी है, यदि वो भारत से हमारे देश में आ जाए तो यहां हर प्रकार की बीमारी से निजात पाया जा सकता है। और इस लक्ष्य से वो बगदाद का ईरान का राजा उसको भारत भेजता है, और वो भारत आता है मंत्री, और भारत में बहुत घूमता है बहुत तलाश करता है, पर कहीं पर भी वो संजीवनी बूटी उसे मिलती नहीं है। यहां वहां भटकते हुए अंततः एक बार थका मांदा वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है तो एक पंडित जी वहां से गुजरते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम अजनबी लगते हो, विदेशी हो। वो कहते हैं हाँ मैं विदेश से आया हूं और भारत में संजीवनी बूटी की तलाश कर रहा हूं। तो पंडित जी कहते हैं संजीवनी बूटी तो हमारे पास थी पर वो केवल हनुमान जी को पता थी कहां थी, केवल उन्हीं ने उसको देखा था, बाद में उसके बाद कोई वर्णन नहीं है। पर मैं हाँ संजीवनी बूटी तो नहीं पर मैं तुम्हें अमृत जरूर दे सकता हूं। कहते हैं अमृत, वो कहते हैं हाँ, जिससे जीवन ही अमृत तुल्य हो जाए। वो कहता है कि हमारे देश में एक ग्रंथ है, यदि उस ग्रंथ का पान किया जाए, यदि उस ग्रंथ का अध्ययन किया जाए और उस ग्रंथ को जीवन में लाया जाए, धारण किया जाए, तो जीवन सकारात्मक विचारों से भर जाएगा और जीवन अमृत तुल्य हो जाएगा। वो ग्रंथ आप यहां से ले जाइए, उस ग्रंथ का आप अध्ययन कीजिए, वो ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते ही आपको अमृत अनुभव होगा। और वो ग्रंथ है भगवद गीता, और वो मंत्री उस ग्रंथ को ले जाता है अपने देश। और कहानी कहती है कि जैसे उस पंडित ने कहा था वैसे ही हुआ, उसका उस राज्य में बहुत प्रभाव पड़ा, और जो कुछ अध्ययन किया गया और जो कुछ बातें उन्होंने उठाई वो वास्तव में अमृत तुल्य थी। तो चाहे वो संजीवनी बूटी मिले या ना मिले, परंतु ज्ञान ही क्या है, संजीवनी बूटी है। गीता ज्ञान ही संजीवनी बूटी है। भगवान जो ज्ञान सुना रहे हैं वही अमृत है, वही सुधा रस है। और उस ज्ञान में भी एक ऐसा अमृत है कि यदि उस अमृत को पा लिया जाए तो जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा है। और वो अमृत जो है, ज्ञान का जो अमृत है, वो है साक्षी की अवस्था, साक्षी स्थिति। ज्ञान तो अमृत है ही, पर उस अमृत में भी सर्वोच्च रस जो कहेंगे, आबे हयात, उर्दू में उसको कहते हैं आबे हयात, अर्थात अमृत, अर्थात नेक्टर, एम्ब्रोसिया। तो सर्वोच्च अमृत जो है वो है साक्षी की अवस्था, साक्षी की स्थिति, साक्षी की साधना, साक्षी का सुधारस। क्योंकि जब इस अवस्था में व्यक्ति स्थित होता है तब उसे सब कुछ वैसा दिखाई पड़ता है जैसा वो है। नहीं तो संसार के मेले में, संसार के झमेले में ऐसा फंसा रहता है कि वो कुछ भी देख नहीं पाता। जब तक वो ऊंचाई में नहीं स्थित होता, जब तक किसी पहाड़ के शिखर पर वो खड़ा नहीं रहता और वहां से ये सारा खेल नहीं देखता, वो प्रभावित होते रहेगा। मुरली में कहा है बाबा ने, ये सारा संसार क्या है, अलौकिक खेल, और इसमें जो परिस्थिति आ रही है वो क्या है, वो छोटे छोटे खिलौने हैं। तो खेल को खेला जाता है खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए। और संसार का ये जो खेल है, ये जो मेला है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जहां व्यक्ति फंसा रहता है वहां से उस खेल को समझ ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता, इसलिए जीवन पर्यंत दुखी रहता है, क्योंकि वो उसे खेल समझता ही नहीं है। वो उसके लिए परिस्थितियां है, कठोर परिस्थितियां है, उसके लिए वो काला नसीब है। अपने आप को बदकिस्मत समझता है, दुखी समझता है, किस्मत को, नियति को, भाग्य को, ड्रामा को दोषी ठहराते रहता है और इस खेल को समझ नहीं पाता है। और यहां पर झूठी आशाएं बांधता है, झूठी उम्मीदें बांधता है, और वो कोई भी उम्मीद उसकी पूरी नहीं होती और संसार में दुखी रह जाता है। काम ना आएगा ये दुनिया का मेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। ये नियम है संसार का, यहां अकेले आना है और अकेले ही जाना है। कुटुंब कबीला सारा झूठा है झमेला, जो अपने लग रहे हैं, कुटुंब वाले, कबीले वाले, वो सब कौन है और कैसे है? मिथ्या है, झूठा है। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी 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 तैयारी में है जाने की। यू एक एक कर जाएगा, जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। दुनिया खिलौना जैसे मालिक का ठेला। मालिक अपना ठेला लेकर निकला है सुबह सुबह, ट्रॉली ठेला होता है ना, बाबा गाड़ी। तो दुनिया का ये मेला, ये झमेला, ये ठेला लेकर भगवान निकला है, खिलौने बेचने आया है। ये दुनिया ही मालिक का ठेला है। हाय, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। इतना भी यदि व्यक्ति जान जाए तो थोड़ा डिटैच हो जाएगा, पर कोशिश नहीं करता ये समझने का, ये समझने की ये बात कि वो अकेला ही है। हमेशा समझता है ये सब मेरे हैं, ये सब अपने हैं। लौकिक से छूटता है, अलौकिक में फंसता है, और कभी अलौकिक में अलौकिक की स्थापना करता है और फिर फंसता है। तो लौकिक से अलौकिक, अलौकिक से लौकिक, यहां से वहां, वहां से वहां जाते रहता है। तो ये खेल है। इसलिए मंजू बहन, इसमें तुम्हें किसी से भी नफरत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। आज का प्रश्न है, तुम्हें किसी से भी घृणा नहीं हो सकती। सबका अपना अपना किरदार है, सब अपना अपना किरदार अदा कर रही है आत्माएं। रूह का अपना अपना किरदार है, किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह ऐसा क्यों करती है? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा ही करना चाहिए था, क्योंकि उसका पद ही वैसा है। आगे किसी जमाने में कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती थी, पर आज नहीं कर रही है और हमें दुख हो रहा है। यह क्यों नहीं करती? क्योंकि उसका पुरुषार्थ वहां पूरा हो चुका है, अभी प्रारब्ध पाना चालू कर दिया है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी। यू एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी। दुनिया खिलौना जैसे मालिक का ठेला। हाय, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। तू जो कहे मैं हूं, ये क्या है? झूठी है बात तेरी। मैं हूं, ये क्या है? तेरी झूठी है बात। वो ही बनाने वाला और वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने दो दिन ना भूलना, बस वो दो ही दिन है जिसे तुमको नहीं भूलना है। एक दिन वो आने वाला और एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला। रेला अर्थात प्रचंड प्रवाह, भीड़ का रेला, पानी का रेला। ये दुनिया एक पानी का रेला है, बह रहा है। ये कुटुंब एक झमेला है और दुनिया ठेला है मालिक का। इसके लिए आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। ये छोटा सा भाव भी मन में आ जाए तो व्यक्ति डिटैच हो जाए संसार से। सबसे बड़ी पीड़ा और सबसे बड़ा रोग है अटैचमेंट। जो कुछ करता है उससे अटैच ही हो जाता है। अच्छे से अच्छा कार्य करता है उससे चिपक जाता है। अच्छे से अच्छी सेवा करता है, वो सेवा का ही वर्णन करते नहीं थकता। वो सेवा ही बंधन का कारण बन जाता है। योगी अर्थात जिसे कुछ भी स्पर्श न करे, अस्पर्शित, अनटच्ड, ना कर्म, ना कर्म के परिणाम, ना व्यक्ति, न व्यक्ति के स्वभाव, न व्यक्ति के संस्कार, ये योगी और कर्मातीत आत्मा की निशानी है। तो लास्ट संडे की अव्यक्तवाणी पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर एक, साक्षी भाव, साक्षी की सीट, मुरली की तारीख है 12/12/84, दुख का वायुमंडल अब भी है, 3 तारीख को भोपाल गैस ट्रेजिडी, भोपाल का कांड 3 तारीख को हुआ था, 10-25 हजार लोग मर चुके हैं, 5-5.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, सारे देश भर में मातम, दुख, आंसू, दर्द, पीड़ा है। 10 तारीख को बाबा आए, लास्ट संडे की मुरली चली, लास्ट संडे के लास्ट संडे की हिसाब किताब सबके चुकतू हो रहे हैं, और उसके बाद 12 तारीख ये मुरली चली। क्या कहा बाबा ने, तुमको क्या होके रहना है, साक्षी। तो ये जो साक्षी की सीट है, कैसी सीट है, ये श्रेष्ठ है। साक्षी की सीट है, कैसी सीट है, बढ़िया है। साक्षी की सीट है, कैसी सीट है, बहुत मजे की है। अगर सीट अच्छी हो तो बैठने में मजा आता है, सीट ही अच्छी ना हो तो मजा आएगा। बहुत अच्छा गेम चालू है, बहुत अच्छा खेल चालू है, बहुत अच्छी मूवी चालू है, पर बैठने को ठीक से नहीं मिला तो मजा आएगा क्या उसका। इसके लिए बाबा ने कहा, साक्षी की जो सीट है बड़ी मजे की सीट है। साक्षी की जो सीट है वो अविनाशी सीट है, वो जो कुर्सी होती है उसमें भय होता है विपक्ष का, कोई कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा मेरी सीट छीनने का, मेरा पोस्ट, मेरी पोजीशन। यहां पर तुम निर्भय हो। ये जो सीट है साक्षी की वो अविनाशी सीट है, ये जो साक्षी की सीट है वो निर्भय सीट है, ये जो साक्षी की सीट है इसमें तुम सदा सेट हो, अपसेट नहीं हो सकते कभी इस सीट पर, ये साक्षी की सीट है। और साक्षी अर्थात क्या, साक्षी अर्थात निर्लिप्त अवस्था, साक्षी अर्थात इंटैक्ट अनटच्ड, साक्षी अर्थात अप्रभावित, साक्षी अर्थात जैसे ये खेल चल रहा है, साक्षी अर्थात एक स्क्रीन है संसार जिसको, जिस पर हम देख रहे हैं, साक्षी अर्थात एक मैदान है जिस पर खेल चालू है, साक्षी अर्थात एक आखाड़ा है जिस पर हम बैठकर दर्शक के मानिंद देख रहे हैं, साक्षी अर्थात एक पर्दा है जिस पर फिल्म चालू है, चाहे फिल्म कहो, पर्दा कहो, स्क्रीन कहो, टीवी कहो, ग्राउंड कहो, आखाड़ा कहो या स्टेज कहो, रंगमंच कहो, और हम दर्शक हैं, हम दर्शक हैं, और वहां पर वो खेल चालू है, वो मूवी चालू है, और वो स्क्रीन पर सब खेल चालू है, हो रहा है उसमें जो कुछ हो रहा है। इस संसार में भी खेल चालू है, यहां पर इस खेल में बहुत सारी चीजें हो रही है। हर समस्या का उत्तर विचार में नहीं, निर्विचार में है। जब जीवन में समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, विचार, विचार से उत्तर को ढूंढते हैं। अभी सोचता हूं क्या करना चाहिए, पूरा एक अमृत वेला दे दिया एक समस्या के लिए, निकला कुछ भी नहीं, क्योंकि उत्तर विचार में नहीं है। उत्तर कहां है, निर्विचार की अवस्था में, निर्संकल्प में उत्तर है, निर्विचार में उत्तर है, साक्षी में उत्तर है। जैसे ही चेतना साक्षी स्थिति में स्थित हो जाती है, बजाय इसके कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, ये रावण ने सीता को क्यों हरण कर ले गया, नहीं हरण करना चाहिए था, शांति से हमारा वनवास काल पूरा हो जाना चाहिए था, शांति से वापस आ जाना चाहिए था, ये क्यों गड़बड़ हो गई यहां पर। साक्षी यहां बैठता है और सारे संसार को देखता है, और ये सीट क्या क्या कहा बाबा ने, ये सीट के लिए श्रेष्ठ सीट है, बढ़िया सीट है, मजे की सीट है, निर्भय सीट है, अविनाशी सीट है, अपसेट ना होने की सीट है, निर्भय सीट है। इस सीट पर सेट होकर सारे खेल को देखो। वो भगवान जो एक तरफ हमेशा कहता है एंजॉय करो, एक तरफ कहता है मौज लो, एक तरफ कहता है मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, वो सारी जो बातें कहने वाला वही भगवान ये भी कहता है कि सब कुछ चुपचाप होकर देखो, साक्षी होकर। बुद्ध भगवान कैसे साक्षी है, उसके इतना साक्षी, वो परम साक्षी है। कल की मुरली में था ने, बाप का ज्ञान क्या था, जो ज्ञान बाप में है वो तुम में है, जो ज्ञान बाप में है वो तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, होना चाहिए। तो वो उसके पास ज्ञान है, हमारे पास उसका सारा ज्ञान होना चाहिए। साक्षी अर्थात परम साक्षी। तो साक्षी स्थिति के लिए ये सारे शब्द कहे बाबा ने, परंतु साक्षी स्थिति से कुछ कुछ बातें हो जाती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो साक्षी स्थिति से क्या क्या होता है, ऐसी 21 बातें। सबसे पहले तो जहां साक्षी भाव है वहां अटैचमेंट नहीं है, ये साक्षी की परिभाषा भी है और साक्षी स्थिति के परिणाम भी है। और साक्षी स्थिति का वर्णन द्वापर युग से कई सारे शास्त्रों में भी आया है, और साक्षी स्थिति को हमेशा से ही सबसे महान स्थिति बताई है, सबसे ऊंची स्थिति साक्षी स्थिति को बताया गया, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। तो सबसे पहली चीज जो होती है साक्षी से वो है अटैचमेंट फ्री। जो साक्षी है उसको साधना करनी है किसी भी प्रकार की अटैचमेंट ना हो। ये साधना भी है अटैचमेंट फ्री, ये परिणाम भी है और वो उसकी परिभाषा भी है। साक्षी में तीन चीजें हैं, साक्षी की साधना, साक्षी की परिभाषा और साक्षी का परिणाम। अटैचमेंट फ्री, अटैचमेंट फ्री, अटैचमेंट फ्री, तीनों जगह। किसी के भी नाम रूप में क्या नहीं होना है, लट्टू नहीं होना है। मुरली थी अभी अभी, एक बाप के सिवा किसी को भी याद मत करो। ये दुनिया कैसी है चीची, ये दुनिया कैसी है पतित, इंद्रियो कैसी है यहां की कर्मेंद्रियो, चीची बासी बदबूदार। तुम्हें अपनी इंद्रिया कैसी करनी है, सुगंधित। सुगंधित मतलब जिसमें सुगंध है। इंद्रियों को सुगंधित करना अर्थात क्या, बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। ये जो इंद्रिया है सुगंधित हो जाए तो दूसरे और ही आकर्षित हो जाएंगे। सुगंधी बाबा, एक बाबा का वर्णन है, स्वामी योगानंद ने वर्णन किया अपनी किताब योगी कथामृत में, जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसके पास ऐसी सिद्धि होती है कि जिसके शरीर से सुगंध आती है, सुगंधी बाबा, फ्रैग्रेंट सेंट। उसमें तो धोखा है, फिर लोग ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। इंद्रियों को सुगंधित करना अर्थात चंचलता समाप्त, इंद्रिया सुगंधित अर्थात शीतल, इंद्रिया सुगंधित अर्थात चलायमान नहीं, स्थिर। यदि यह शरीर है, इस शरीर को एक चीज खाने की आदत है और इस शरीर ने इस चीज को खाया और कुछ समय यह चीज नहीं खाती है तो वो चीज खींचती है। क्यों? क्योंकि इस चीज की स्मृति अभी भी इस शरीर में है, पर लंबा समय यह शरीर जब इस चीज को खाएगा ही नहीं तो उसकी जो क्रेविंग है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति बीड़ी पीता है, अभी एक साल से बंद कर दिया, फिर भी बीच बीच में तलब उठती है, खाऊं पीऊं तंबाकू खाऊं कुछ तो करूं, पर वो अगर 10 साल तक ना करे, तलब उठना, क्रेविंग होना, आकर्षण होना अर्थात उसका अंश अभी भी देह में है। काम विकार से संपूर्ण मुक्ति अर्थात कैसे भी दृश्य आंखों के सामने आ जाए, कैसे भी संसार की कैसी भी अश्लीलता आंखों के सामने आ जाए, अगर यहां अंश है विकार का तो काम उठेगा, अगर अंश ही समाप्त हो गया तो कुछ भी आ जाए कुछ भी नहीं उठेगा। बुखार आ रहा है मतलब कोई तो बीमारी अंदर है, वो बुखार बता रहा है अच्छा है बुखार आ रहा है, पता चल रहा है अंदर कोई बीमारी अब भी है। यदि हलचल हो रही है इसका अर्थ अभी भी पवित्र नहीं बने हैं, इसके लिए पुरुषार्थ को और तीव्र करने की आवश्यकता है। बीड़ी तो छोड़ दी 2 साल से, पर दूसरा बीड़ी पीते हुए देखता तो एकदम से कुछ कुछ होता है, इधर से जाना पड़ता है। अभी पीता नहीं है पर दूसरे को पीते देखा पुराने दिन याद आ जाते। अभी पीना बंद है पर दूसरे को पीता देखा तो मधुशाला फिर याद आ जाती है, अर्थात अभी भी उसके अंश बाकी है। जब उसके सारे ही अंश खत्म हो जाएंगे, जब अंदर ही नहीं है तो बाहर कुछ भी होने दो कुछ भी नहीं होगा। जब अंदर मोह ही खत्म हो गया है, मोह के धागे, तो बाहर कुछ भी होने दो, कोई भी आ जाए, कितना भी अच्छा मित्र, कोई भी मित्र संबंधी दोस्त, रगे टूटी हुई है तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो 10 साल पुराना कोई दोस्त सामने आ गया अचानक तो सारा ज्ञान योग एक तरफ और पुरानी बातें चालू जो तब करते थे अज्ञान काल में, पता नहीं फिर समझ में आता ये कैसे हो गया। हमने तो बड़े वैराग्य के संकल्प धारण कर रखे थे, आज अचानक मोह कहां से प्रकट हो गया जो कि था ही नहीं, और वो व्यक्ति चला गया और फिर मोह खत्म, फिर से वैराग स्थिति में स्थित, ये क्या हो गया। जगदीश भाई ने कहानी लिखी है, एक सन्यासी जा रहा था, प्यास लगी कुएं पर, एक बकेट थी, रस्सी थी, डाली अंदर, पानी निकाला, पानी पिया, बहुत तृप्त हो गया, देखा दूर दूर तक रेगिस्तान जैसा है, सोचता है ये बाल्टी और रस्सी साथ में ले चलू, पता नहीं अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुआ तो मिल जाएगा और निकालूंगा कैसे, दोनों लेके जाता है और साथ में लेके चलता है तो फिर याद आता है अरे सारा संसार छोड़ दिया और मैं बकेट और रस्सी ले चल रहा हूं, इसमें मेरा मोह रह गया, वापस छोड़ के आता है, पूछता है ये कुआ किसने बनाया, पता चलता है एक चोर था किसी जमाने में, बहुत चोरी का माल जमा किया था, उसी ने कुआ बनाया था। तो वो संस्कार अभी तक उसमें है, उसके प्रकंपन वाइब्रेशंस। तो साक्षी अर्थात सबसे पहले अटैचमेंट फ्री, साक्षी अर्थात सेकंड ब्लेम फ्री। साक्षी किसी को ब्लेम नहीं करेगा, इसका दोष है उसका दोष है, इसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा खराब हुआ, मेरे जीवन में मेरे सारे दुखों का कारण यही है, ये नहीं होता ना तो मैं इतना अच्छा होता जीवन क्या बताऊं, जब से ये आया है तब से सारी गड़बड़ चालू हुई, सारी आजमाइशें तभी से चालू हुई जब से ये आया, ये हट जाए बस, ए खुदा उठा ले उसको। पड़ोसी को साक्षी अर्थात उपराम स्थिति है, एक चोटी पर बैठे हुए पहाड़ पर बैठकर सारा खेल देखा जा रहा है, और नीचे आओ इन्वॉल्व हो जाओ तुरंत फिर से साक्षी स्थिति में स्थित हो जाना है, 24 घंटे में एक बार तो संपूर्ण साक्षी हो जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई जी रहा है कोई मर रहा है, कोई लेना देना नहीं किसी से, संपूर्ण निष्ठुर भव, निर्दयी, जैसे भगवान है। ये टेबल है, इसको कोई फर्क पड़ता है यहां कुछ हो गया यहां कुछ गिर गया खराब हो गया, ये जड़ है, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उतना साक्षी हो जाना जितना ये टेबल साक्षी है, बीच बीच में ये अभ्यास है योगी का। तो कोई ब्लेम नहीं। तीसरा, साक्षी अर्थात कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट अर्थात लड़ाई, मन में कोई घर्षण, कोई फ्रिक्शन, किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट, किसी से भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। किसी से क्या झगड़ा करे, झगड़ा करे कि तुम गलत कर रहे हो, ड्रामा प्लान अनुसार वो भी राइट है। हम जो सोचते हैं ये गलत है, वो सोचता है हम गलत है, हम सोचते हैं ये बड़ा अहंकारी है, वो सोचता है तुम बड़े अहंकारी हो, हम सोचते हैं इसको श्रीमत पर चलना चाहिए, वो सोचता है हम श्रीमत पर नहीं है। हम जिसके लिए जो सोचते हैं इसमें ये अवगुण है, बराबर वो व्यक्ति वही सोचता है हम में वो अवगुण है। हम किसको कहते हैं तुम में ईर्ष्या बहुत है, वो सोचता है तुम में क्या कम है। हमने इतना रहम दिल से चिंतन किया, बहुत चिंतन किया, बहुत चिंतन किया, और उसका पूरा चिंतन करने के बाद बाबा से पता चला कि ये जो आत्मा है इसमें ये अवगुण है। और एक बार बड़ी ही शुभ भावना और शुभ कामना से उसके साथ बैठे और उसको बताया कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे बाबा आलस कहते हैं। वो कहते कि तुम में क्या कम है। जो हमने पूरा चिंतन करके सोचा कि इसमें ये अवगुण है, वो व्यक्ति बराबर वही सोचता है कि तुम में भी वही है, तो गड़बड़ हो गई ना सारी। इसलिए क्यों बताना है, जो जो कर रहा है करने दो। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कोई किसी को कॉन्फ्लिक्ट नहीं। उसके बाद में साक्षी अर्थात डिस्टर्बेंस फ्री, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जैसे इन्वॉल्व होंगे और ठीक करने जाओगे लोगों को, डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा। मैं एक एक को ठीक करता हूं, ये सब अनसुधरेले हैं, बिगड़े हुए हैं, बाबा का काम मुझे ही करना पड़ेगा लाठी लेकर, एक एक को ठीक करके, एक एक को देख लूंगी। गिन गिन के बदला लूंगी, एक एक से हिसाब लूंगी। क्यों लेना है, साक्षी अर्थात किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं, देख रहे हैं बस। साक्षी अर्थात इफेक्ट फ्री, प्रभाव मुक्त, किसी प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं। या जो हो रहा है होने दो, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, उसे ही गम नहीं तो क्यों हमें हो गम। उसको कुछ गम नहीं है तो हमें क्यों गम हो, हम क्यों फिक्र करें, हम क्यों जिक्र करें। आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, प्रभाव मुक्त। उसके बाद में भय मुक्त, फियरलेस। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, साक्षी अर्थात भय मुक्त। उनको भय होता है हमारी कुर्सी कोई छीन ना ले, तुम्हें कोई भय नहीं क्योंकि तुम्हारी अविनाशी कुर्सी है। और एक चीज बताई इसी मुरली में, वो बात भूल गए, ये आराम की सीट है, इसमें जो बैठे जितना बैठे जो अनुभव करना चाहो जैसा अनुभव करना चाहो वैसा कर सकते हो। कितनी महिमा कर रहे हैं साक्षी स्थिति की। साक्षी संपूर्ण देखते रहना, देखते रहना, कहीं पर भी जरा भी डिस्टर्बेंस अंदर ना हो। अंदर बाहर से थोड़ा सा हो रही बातें चल रही है, पर वो ऊपर ऊपर का है, सतह ही है, सुपरफिशियल है। अच्छा ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ठीक ठाक थोड़ा सा, और निकल के बाहर, वो भी थोड़ा सा दिखावे के लिए, नहीं तो लोग बोलेंगे ये तो बिल्कुल ही है, हाँ पूरा एकदम ही है, कोई केयर, अनकेयरिंग और अनइमोशनल है। साक्षी वालों के ऊपर ये आरोप हमेशा लग सकता है, ये तुमको तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है, बेपरवाह हो तुम, कोई लेना देना नहीं है तुम। परंतु ये स्थिति वो वाली नहीं है, ये घृणा वाली स्थिति नहीं है, अनकेयरिंग वाली स्थिति नहीं है। हो सकता है व्यक्ति बहुत केयर भी कर रहा है पर अंदर से फिर भी साक्षी है, ये वो मीठी स्थिति। आज बोला ना मीठा, बच्चे कैसे बनो, मीठा मीठा, दो बार बोला ना मीठा, बहुत बहुत मीठा बनो, दो बार बोला मोहब्बत, तो ये वो मीठी अवस्था है। तो साक्षी अर्थात नो फियर, साक्षी अर्थात नो गिल्ट, अपराध भाव नहीं है। कोई मेरे से ये हो गया, मेरे से पाप हो गया, मैंने नहीं करना चाहिए था, वो ग्लानी का भाव भी नहीं है अंदर, वो रिपेंटेंस का भाव भी नहीं है अंदर, पश्चाताप। गिल्ट अलग है, पश्चाताप अलग है। गिल्ट अर्थात अपराध भाव, उसके बाद में साक्षी अर्थात हैप्पीनेस एंड सॉरो से परे अवस्था है, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है उसमें। नहीं तो संसार की चीजें, कोई अच्छी चीज हो गई, अच्छी सेवा हो गई, बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी, और डिससर्विस हो गई एकदम दुखी और अचिंतन चालू, ऐसे हो जाता है। साक्षी अर्थात सुख भी नहीं है वहां दुख भी नहीं, आनंद की अवस्था है, सुख और दुख से परे आनंद है। सुख दुख तो छोटे हैं संसार के, आनंद अवस्था ब्लिस जॉय की अवस्था ऊपर है। मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं, वहां सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है। यहां संसार की प्राप्तियों से सुख नहीं, संसार की अप्राप्ति से दुख नहीं, संसार की सफलता से सुख नहीं, संसार की असफलता से दुख नहीं, यह अवस्था। उसके बाद में साक्षी अर्थात नो इंटरफियरेंस, क्यों हस्तक्षेप करें, हम किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारी शुभ भावना बहुत है कि ये व्यक्ति ना करे ये ना करे, पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी तकदीर उसे खींच के लेके जा रही है वहां तक। कोई कन्या है, देखा जा रहा है इतनी अच्छी ब्रह्मा कुमारी है, बन सकती है, उसमें सब कुछ सारे दिव्य गुण है, उसमें बोलने की कला है, सेवा की कला है, हर प्रकार की कला है, और हमारी आंखों के सामने इश्क प्यार मोहब्बत संसार में फंस रही है और जा रही है और चली भी गई, हम क्या कर सकते, कुछ कर सकते, स्वीकार करना पड़ेगा इस संसार के इस खेल को। हस्तक्षेप करने जाओगे खुद ही दुखी होंगे। हां बताना एक बार, समझाना, नसीहत देना वो ठीक है, परंतु वो मानेंगे नहीं। जिस पर भूत सवार हो जाता है कौन सा, प्यार नहीं इश्क, वो सुनता है क्या किसी की, कभी नहीं। साक्षी अर्थात जेलसी फ्री, किसी प्रकार से किसी से कोई जेलसी नहीं है, क्यों ईर्ष्या करे किसी से। आज कहा ना, घृणा किसी से नहीं हो सकती, तुमको किससे नफरत करेंगे, ये ठीक नहीं कर रहे इसलिए, इसने हमारे साथ ठीक नहीं करे इसलिए हम नफरत करें। अरे तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, क्यों नहीं किया तुम्हारे साथ ठीक, उसकी तरफ से तो वो सोचता है ठीक ही किया, हम सोच रहे उसने ठीक नहीं किया, वो सोचता है ऐसा, वो तो सोचता है मैं राइट हूं। दुर्योधन तो सोचता है ये पांडवों को तो और ज्यादा मजा चखाना चाहिए, सब लोग समझा रहे हैं उसको, अंत तक नहीं सुधरता है, नहीं समझता है। रावण को सब ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, उसके पिता ने समझाया, उसकी मां ने समझाया, वो माल्यवान काका थे उसने समझाया, विभीषण ने सबसे ज्यादा समझाया, यहां तक कि एक एक जो पुत्र कुंभकर्ण मरने से पहले समझा के जाता है, यहां तक मेघनाद भी कहता है कि मेरे तीनों अस्त्र फेल हो चुके हैं, इसके लिए साधारण नहीं समझो, अभी भी मान जाओ, पर वो नहीं मानता है, लास्ट तक नहीं मानता है, क्या करें। इसलिए कोई न माने तो दो उदाहरण याद रखना, दुर्योधन और रावण, क्या कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध होना ही था, रामायण का युद्ध होना ही था, इसके लिए उनका न मानना ही ड्रामा में नूंद है। इसके लिए इससे क्या जेलसी, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, जिसको जहां जाना है जाने दो, अच्छा है, इसमें जेलसी की कोई बात ही नहीं है, क्यों हम जेलस हो किसी। उसके बाद में एल, लैमेंट, लैमेंट अर्थात पश्चाताप, लैमेंटेशन, किस बात का पश्चाताप करे, ड्रामा में नून था, बाबा ने कहा ड्रामा पास्ट जो हो गया है उसके लिए, ड्रामा का प्रयोग केवल पास्ट के लिए ही करना है कंपल्सरीली, आगे जो होने वाला है वर्तमान जो है उसके लिए कभी भी ड्रामा का प्रयोग नहीं करना है, यह सबसे बड़ी भूल है। ड्रामा का सबसे ज्यादा मिसयूज कहां होता है, फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए प्रयोग करते हैं। ड्रामा केवल कल, सारा दिन भर कल जो एक घंटा बीच में वेस्ट कर दिया किसी से बात करते हुए, अब उसको फुल स्टॉप लगाओ, आगे से नहीं करेंगे, यह है ड्रामा। आज देखते हैं ड्रामा में क्या है, मैं पुरुषार्थ करता हूं कि नहीं, आज देखता हूं मुरली तो अच्छी चली है, पर देखते हैं आज सारे दिन भर ड्रामा अनुसार टाइम मिलता है कि नहीं पढ़ने के लिए। ये ड्रामा नहीं है, ड्रामा पूरा मेरे वश में है, वो तो जो पास्ट हो गया ना वो मेरे वश में नहीं है, अभी जो है ना उसका मैं मालिक हूं, मैं ड्रामा जीत हूं, मैं ड्रामा का क्रिएटर, ड्रामा का मालिक, ड्रामा का मास्टर, मास्टर ड्रामाधारी। मिसअंडरस्टैंडिंग फ्री ड्रामा, साक्षी अर्थात किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है अर्थात साक्षी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग फ्री अर्थात दूर। मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है, गलतफहमी, उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तब व्यक्तियों के बीच में। आज वर्तमान समय सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस जो चल रहा है संसार में वो है रिश्ते, रिश्तों में, पति पत्नी बच्चे भाई दोस्त संबंधी, रिश्तों में इतनी कड़वाहट है, इतनी कड़वाहट है, और सबसे ज्यादा कड़वाहट अपनों में है। बाहर वालों से तो कोई दुख नहीं है, सबसे ज्यादा दुख अपने जो एक पति पत्नी बच्चे साथ मिलकर जा रहे हैं घूमने, ऊपर से खुश दिख रहे, एंजॉय कर रहे, उन्हीं के बीच में सबसे ज्यादा द्वंद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, शक है, डर है। साक्षी अर्थात मिसअंडरस्टैंडिंग फ्री, एन साक्षी अर्थात निगेटिविटी फ्री। मन में इतनी निगेटिविटी भर गई है क्योंकि निगेटिविटी देखी, जितनी ज्यादा निगेटिविटी देखेंगे उतना मन निगेटिव होगा, और जितना मन निगेटिव है कहां से योग लगेगा, कहां से ज्ञान का चिंतन होगा। निगेटिव माइंड वीकेस्ट माइंड है इन द वर्ल्ड, सबसे कमजोर मन नकारात्मक मन है, जिसमें केवल नकार के संकल्प है, वो क्या सोच पाएगा, हर चीज के लिए निगेटिविटी है मन में भरी हुई, हर चीज के प्रति एक पहले से ओपिनियन फॉर्म्ड है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, यहां ऐसा ही होता है। साक्षी अर्थात फ्री। उसके बाद में प्रिजुडिस फ्री, पी प्रिजुडिस अर्थात पक्षपात, जो व्यक्ति इन्वॉल्व होता है वो पक्षपात करता है। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस अर्थात पक्षपात, भाई भतीजावाद, इम्पार्शियलिटी, वो सारी बातें, वो सब होती है जब साक्षी नहीं है। दूर रहो तो ये सारा एक जैसा लगता है, क्यों इससे अच्छे से बात करे और इससे अच्छे से ना बात करे, ये क्यों ज्यादा इससे प्यार है इससे कम प्यार है, इसको ज्यादा दी टोली, ये हमारा अपना है, ये पराया है, ये अपना पराया कहां से आ गया। साक्षी अर्थात सभी से साक्षी, सबके लिए सेम, भगवान के सामने, बाबा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने, अगर कोई टेररिस्ट भी आ जाए और बंदूक लेके खड़ा हो जाए तो बाबा क्या कहेंगे उसको, ओ मीठे बच्चे। वो कहेगा कुछ मत बोलो, मैं विरोधी हूं आपका। तो वो सभी के प्रति समभाव है, समदृष्टि है उसकी, कहीं पर भी मतभेद नहीं है। उसके बाद में क्यों, कोई क्वेश्चंस नहीं, जब मन में इतने प्रश्न है, इतने प्रश्न है, प्रश्न ही प्रश्न, अमृत वेला चल रहा है पर मन में दिन भर के जो प्रश्न है लोगों के संबंध संपर्क वाले वही चल रहे, घूम रहे, गूंज रहे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों करते, मेरे साथ ही क्यों करते लोग ऐसा, सब बाकी सब तो बहुत सुखी दिखते हैं। उसके बाद में आर रिएक्शन, नो रिएक्शन, किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स करना है साक्षी अर्थात तुरंत रिएक्ट करना, यह साक्षी भाव नहीं है। अगर हम कर रहे तो इस साधना की ज्यादा आवश्यकता है। साक्षी अर्थात नो शॉक, शॉकलेस, कोई परिस्थिति अच्छा ऐसा हो गया, एकदम शॉकिंग न्यूज है ये तो, ऐसा तो सोचा ही नहीं था, ये भी ऐसा कर देगा, इतने साल ज्ञान में चलने के बाद ऐसा हो गया, कोई शॉक नहीं, ठीक है, ये भी होना था वो भी होना था। टी कोई टेंशन नहीं, साक्षी अर्थात स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, तनाव नहीं। और साक्षी अर्थात लास्ट 21वां पॉइंट अपसेट, एक बचा है ओ। साक्षी अर्थात ऑब्जेक्शन नहीं, या ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं, विघ्न नहीं, साक्षी स्थिति निर्विघ्न स्थिति है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई किसी से ऑब्जेक्शन नहीं, ये तुमने ऐसा क्यों किया, एक होता है क्वेश्चंस ढेर सारे मन ही मन, एक होता है क्रिटिसाइज करना, ऑब्जेक्ट करना, हर चीज में आवाज उठाना, ये ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो साक्षी स्थिति बड़ी मीठी स्थिति है। साक्षी स्थिति का अभ्यास करना है। कैसे करेंगे अभ्यास? ऐसे सोचना पहाड़ पर बैठा हूं, नीचे देख रहा हूं। यह सोचना मैं सड़क के किनारे बैठा हूं, लोग आ रहे जा रहे, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है। साक्षी स्थिति अर्थात झाड़ को देखना है, झाड़ के सारे पत्ते, कुछ ऊपर है, कुछ गिर रहे हैं, कुछ सूख गए, कुछ लटके हुए हैं। साक्षी स्थिति अर्थात ऊंचा जाना फरिश्ते के रूप में आसमान में और वहां से संसार को देखना। साक्षी स्थिति अर्थात ऑडियंस के साइड में बैठना और सिनेमा हॉल देख रहे, स्क्रीन देख रहे। साक्षी अर्थात जैसे टीवी देख रहे। साक्षी अर्थात जैसे कोई ग्राउंड है जिसमें गेम चल रहा है, हम देख रहे। साक्षी अर्थात कोई अखाड़ा है, मल्ल युद्ध हो रहा है, हम देख रहे। अलग अलग जगह स्वयं को बिठाना है, कभी पहाड़ पर, कभी अखाड़े में, कभी सिनेमा हॉल में, कभी मंदिर की मूर्ति भी देखो कैसी होती है। साक्षी होती है ना, कितने लोग आते हैं दिन भर में, सबको क्या करती है, कुछ बोलती है क्या? कुछ नहीं करती, देखती रहती है मजे से। कोई अनन्य भाव से आता है, कोई स्वार्थी भाव से आता है, कोई चोरी करने आता है गहने, फिर भी नहीं कुछ करती है वो मूर्ति को ही ले जाते है। फिर भी मूर्ति ये नहीं बोलती मुझे मत चुराओ। मूर्ति का साक्षी भाव देखो कितना ज्यादा है। तो संपूर्ण साक्षी और इस संसार के खेल को देखना है। क्या बताया गीत में कि ये संसार कैसा है, अकेला है, अकेला जाना है, ये मालिक का ठेला है, ये पानी का जीवन बहता हुआ रेला है, ये कुटुंब कबीला सब कुछ क्या है, झूठा झमेला है। अच्छा, ओम शांति।
दुनिया का मेला आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। ओ कोई आज गया गया, कोई जाने वाला अभी अभी, कोई आज गया कोई काल गया कोई जाने वाला अभी अभी, जो एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, दुनिया खिलौना जैसे बालक का खेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। जो कहे के मैं हूँ झूठी है बात तेरी, वो ही बनाने वाला वो ही मिटाने वाला, लाखों दिनों में अपने दो दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला एक दिन ये जाने वाला, जीवन बहेगा जैसे पानी का रेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला।